saya. गिरिवर धारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वन चारी यमुना यमुना तीरा वन चारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन जय हो जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय 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 जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय जय जगन्नाथ जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की निताय गौर हरि प्रेमानंद ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोर्जयमुदीरये श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 24 और श्लोक संख्या 64 यस्याननं मकर कुंडल चारुकर्ण ध्वजात् कपोल सुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्रुपुर दृष्टिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदितः कुपिता निमेश्च यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण यस्या यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण यस्याननं भ्राजत् कपोलसुभगं सविलासहासम् भ्राजत् कपोलसुभगं सविलासहासम् नित्योत्सवं न तत्रुपुरदृशिभिः पिबन्त्यो नित्योत्सवं न तत्रुपुरदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदितः कुपिता निमेश्च यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत् कपोलसुभगं सविलासहासम् नित्योत्सवं न तत्रुपुरदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदितः कुपिता निमेश्च यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत् कपोलसुभगं सविलासहासम् नित्योत्सवं न तत्त्वपुरदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदितः कुपिता निमेश्च यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम् नित्योत्सवं न तत्त्वपुरदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदितः कुपिता निमेश्च यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजकपोलसुभगं सविलासहासम् नित्योत्सवं न तत्त्वपुरदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदितः कुपिता निमेश्च माताजी यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम् तत्पुरदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदितः कुपिता निमेश्च ठीक है यस्य जिसके आननं मुखमंडल मकरकुंडल चारुकर्णा मगर जैसे कुंडलों से अभूषित तथा सुंदर कानों से भ्राजत चमचमाते हुए कपोल मस्तक सुभगम सारे ऐश्वर्यों की घोषणा करने वाले सविलासहासम भोग की हंसी से युक्त नित्य उत्सवम जब भी कोई उन्हें देखता है उत्सव में उत्सव को अनुभव करता है न तत्रुप हो संतुष्ट नहीं हुआ दृष्टि भी भगवान के स्वरूप को देखकर पिबंध्या आंखों से मानो पी रही हो नार्यः वृंदावन की सारी स्त्रियां नरः सारे पुरुष भक्त च भी मुदितः पूर्णतया संतुष्ट कुपितः क्रुद्ध निमेहे आखे जपक्ति च भी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री केदान स्वामी श्री शंकरा जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। कृष्ण का मुखमंडल मकराकृत के कुंडलों से सुसज्जित हैं, उनके कान सुंदर हैं, उनके गाल चमकीले हैं और उनकी हंसी हर एक को आकृष्ट करने वाली है। जो भी कृष्ण का दर्शन करता है मानो उत्सव देख रहा हो। उनका मुख तथा शरीर देखने में हर एक को पूर्णतया तुष्ट करने वाले हैं, लेकिन भक्तगण सष्टा से क्रुद्ध हैं कि उन्होंने उनकी आंखों के झपकने से व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। तात्पर्य, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद गीता अध्याय 7 तीसरे श्लोक में कहा है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यदाम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है उनमें से मुश्किल से कोई एक मुझे सचमुच जानता है। जब तक कोई कृष्ण को समझने के योग्य नहीं होता वह पृथ्वी पर कृष्ण की उपस्थिति को समझ नहीं पाता। भोज वृष्णी अंधक पांडव तथा कृष्ण से संबंधित अनेक राजाओं में से कृष्ण एवं वृंदावन के वासियों के घनिष्ठ संबंध विशेष तौर पर विचार करने योग्य हैं। इस संबंध को इस श्लोक में नित्योत्सवम न तत्पुरदृष्टि पिबंत्य शब्द द्वारा बतलाया गया है। विशेषतया वृंदावन के निवासी यथा गोप गाय बछड़े गोपियां कृष्ण के माता पिता कभी भी तुष्ट नहीं हुए, यद्यपि वे कृष्ण के मुखमंडल का निरंतर दर्शन करते थे। यहाँ पर कृष्ण के दर्शन को नित्य उत्सव कहा गया है। वृंदावन के निवासी लगभग हर क्षण उनका दर्शन करते थे, किंतु जब वे गाय से चरागाह में गायों तथा बछड़ों को चराने जाते तो गोपियां अत्यंत दुखी हो जाती थी, क्योंकि वे देखती कि कृष्ण के उन पावों में कंकण गड़ रहे हैं जिन्हें वे अपने वक्षों पर इसीलिए नहीं धार करती थी कि कहीं वे कठोर लगे कठोर न लगे। ऐसा सोच समझकर गोपियां अपने घरों में रो पड़ती थी कि कृष्ण की मित्र तुल्य गोपियां कृष्ण को निरंतर देखती थी लेकिन पलके देखने के कारण बाधा डालती थी पलके देखने में बाधा डालती थी अतएव वे स्रष्टा अर्थात ब्रह्मा जी को कोसती रहती थी। इसलिए यहाँ पर कृष्ण के मुख की सुंदरता का विशेष वर्णन हुआ है। नवम स्कंद के अंतिम इस 24वें अध्याय में हम कृष्ण के सौंदर्य के विषय में संकेत पाते हैं। अब हम दशम स्कंद की ओर बढ़ रहे हैं जो कृष्ण का सिर माना जाता है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण साक्षात कृष्ण स्वरूप है और दशम स्कंद उनका मुखमंडल है। इस श्लोक से यह संकेत मिलता है कि उनका मुख कितना सुंदर है। कृष्ण का हसीला मुख, उनके गाल होठ कान के आभूषण, उनका पान चबाना, इन सब का सूक्ष्म निरीक्षण गोपियां करती थी और इस तरह दिव्य आनंद प्राप्त करती थी। वे कभी कभी कृष्ण का मुख देखकर संतुष्ट नहीं होती थी अपितु वे शरीर बनाने वाले की भर्त्सना करती थी कि उन्होंने पलकें क्यों बनाई जिससे उनकी दृष्टि में रुकावट आती है। इस तरह गोप मित्रों या यशोदा माता से भी बढ़कर जो कृष्ण के मुखमंडल को सजाने में रुचि रखती थी गोपियां कृष्ण के मुख सौंदर्य की प्रशंसा करती हैं। श्री प्रभुपाद की। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवमं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितास्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुं मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदां भोजो श्रीराधा मदन मोहनो श्रीराधा मदन मोहनो। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। प्रभुपाद जी ने प्राय इस भागवत को सुबह क्लास जो रखा है, क्योंकि भागवत को जानते थे और इतना मानते थे कि यही लोगों का उद्धार करेगा। भगवान की कथा सुनने से ही लोग जो संसार में दग्ध है दुखी है, इस कथा सुनते इनके जो भव रूपी रोग लगा है उससे उद्धार होगा। हम जिस प्रसंग में हैं, भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं और सुनाते सुनाते सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन कर रहे हैं और चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन करते करते वह सुरसेन वसुदेव और वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत अद्भुत लीलाओं का अद्भुत अद्भुत चरित्र उनकी लीलाएं की, और जिसमें उनका अनेक लोग जैसे पांडव भीष्म इत्यादि यदुवासियों के पति। तो ये बात कहते कहते सुखदेव गोस्वामी अब इस श्लोक को कह रहे हैं, और जब इस श्लोक को कहा सुखदेव गोस्वामी ने, कृष्ण के सुंदर मुखमंडल का वर्णन किया कितने सुंदर हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भक्त इसी स्वरूप को देखकर पीते रहते हैं, भगवान के सौंदर्य को पीते पीते वो कभी तुष्ट नहीं होते हैं। जैसे गोपियां वृंदावन की व्रज नारियां कृष्ण के इस स्वरूप को देखते पीते पीते कभी तुष्ट नहीं होती थी, और उल्टा वो ब्रह्मा जी को शरीर बनाने वाले को दोष देती थी कि जब आंखें की पलक झपकती हैं तो उतने समय तक हम कृष्ण को नहीं देख पाती हैं, और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, ऐसा समझते थे। इस भगवान के स्वरूप का वर्णन जब सुखदेव परीक्षित महाराज ने सुना तो उनके जीवन में अब 4 दिन पूरे हो गए थे, और 5वें दिन वो सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि आज तक तो आपने हमें इन सभी राजा महाराजाओं और अद्भुत अद्भुत चरित्र हमें सुनाए, कथित वंश विस्तारो सोम सूर्य यो, इन दोनों वंशों का वर्णन आपने किया अद्भुत अद्भुत चरित्र, लेकिन अब मैं आपसे कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। तब वो कृष्ण की याद कर रहे हैं, कथा की महिमा अपने मुख से भी कह रहे हैं। दीक्षित महाराज कहते हैं कि जो कथा है, निवृत्त तरसे उपगीय मानाद भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामात। ये कथा है निवृत्त तरसे श्रोत्र मनोभिरामात। ये जैसे 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक विषय मुमुक्ष और मुक्त, 3 प्रकार की कैटेगरी होती हैं संसार में। प्राय लोग विषयी लोग हैं जो विषयों में फंसे हुए हैं, और एक दूसरे प्रकार के लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि ये संसार दुखालय है और परम परमात्मा परम भगवान श्री कृष्ण से मेरा संबंध है और भगवत प्राप्ति करना ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, और उसके लिए जो प्रयास करते हैं जैसे हम सब, उसे मुमुक्ष कहते हैं। और तीसरे हैं जो निवृत्त तरसे, जो इन सभी से मुक्त हो चुके हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त कर ही लिए हैं, भगवान का अनुभव करते हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि इन तीनों के लिए ये हरि जो कथा है वो तीनों पसंद करते हैं। निवृत्त तरसे उपगीय मानात भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामात, जो निवृत्त हो गए हैं वो भी इस कथा को पसंद करते हैं, और वो भी इन कथा को सुनकर भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं। और भवो सदा श्रोत्रोभिरामात, जो भव इस संसार में फंसा हुआ है और समझ गया है कि मैं फंसा हुआ हूं, उनको निकलना है, उनके लिए क्या है, भव औषधि, कथा औषधि मात्र है ना। हम सबको भव रोग लगा है संसार में, शरीर के बहुत सारे रोग हैं, लेकिन सभी रोगों का मूल है भव रोग। हम इस भव में आए हैं इसलिए सारे जो रोग हैं इसीलिए प्रकट हो रहे हैं। यदि हम इस भव रोग से मुक्त हो जाए तो अन्य कोई भी रोग हमें बाधा नहीं कर सकता। अच्छा, संसार में जो रोग हैं उनके लिए बहुत सारी औषधि दवाएं हॉस्पिटल में दी जाती हैं, लेकिन ये भव रोग से मुक्त होने के लिए कौन सी दवा है, कहते हैं भव औषधा, ये जो है भव रोग के लिए औषधि है। और इसीलिए प्रभा जी जब जा रहे थे अमेरिका तो यही स्मरण कर रहे थे कि इन लोग जो फंसे हैं उन भव रोग से मैं कैसे मुक्त करूं। लेकिन जब जब उनको भागवत की याद आती थी तब उनको पूरा विश्वास होता था कि इस भागवत भगवान की कथा के द्वारा इन लोगों का अवश्य उद्धार होगा। इसलिए अपने भजन में उन्होंने 4 या 5 श्लोक कोटेशन किए हैं, पुण्य श्रवण हरि कीर्तन इत्यादि भव औषधि है। और वास्तव में भक्तों के लिए औषधि बार बार पीने योग्य है, बार बार इसे पीना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और भव रोग में हैं, है ना। रोगी व्यक्ति को तो औषधि समय से लेना चाहिए, यदि औषधि बंद करते हैं उनका रोग और बढ़ जाता है। और हम लोगों को प्राय रोग लगा है, इसलिए औषधि को लेना चाहिए। और यदि हम इन औषधि को लेते हैं तो संसार के दुख, संसार के जो दुख हैं, विषयों का जो दुख है ना, वो सब बाधा नहीं करेगा, उससे हम मुक्त रह सकते हैं। जैसे संसार के लोग बहुत दुखों से दग्ध हैं, प्राय जन्म जरा व्याधि मृत्यु आदि देविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, और इसके ऊपर जो भक्ति में लग गए हैं उनको भी दुख है ना। उनको भक्त लोगों के, भक्त के हृदय में ये दुख होता है कि विषय काम क्रोध मद ये परेशान करते हैं, है ना। प्राय लोगों का ये प्रश्न होता है, जप करते हैं तो मन भाग जाता है, विषयों की ओर भाग जाता है। ये जो है विकार वो भक्त को परेशान करता है। इनके लिए औषधि है हरि कथा। यदि ये औषधि को हम बार बार पीते हैं ठीक वैसे, और भाई यहाँ पर हम जो भक्त हैं हमारा जीवन भौतिकता में भी है ना, हम संसार के कार्यों में भी लगे हैं और साथ साथ भजन करके भगवान को भी प्राप्त करना है। संसार के दुख और उनके विकार तो आएंगे ही, तब क्या करें? माया के साथ भी युद्ध करना है और भजन करके भगवान को प्राप्त भी करना है। तब कहते हैं ये जो औषधि है उसी को बार बार यदि पीते रहेंगे तो हम माया के साथ भी युद्ध करते रहेंगे, लेकिन क्यों होगा? तब हमारे आचार्यगण एक उदाहरण देते हैं, जैसे नेवला है ना, आपने सुना होगा, नेवला जो होता है वो सर्प से युद्ध करता है। देखा तो शायद किसी ने नहीं होगा, है ना, लेकिन सुना होगा। नेवला और सर्प की बड़ी दुश्मनी होती है, और सर्प जो है वो जहरीला है, उनके पास बहुत जहर है, और यदि किसी को डंस लेता है तो मार देता है। तो फिर ये नेवला छोटा सा जीव उनके साथ कैसे टक्कर लेता है? वो नेवला के पास एक ऐसी औषधि जो वो जानता है, जब वो सर्प के साथ युद्ध करता है, बहुत युद्ध वो करता है और सर्प उनको फेन मार मार के जहर भर देता है, तो वो अपने शरीर को कमजोर महसूस करने लगता है, जहर उनको चढ़ जाता है, तो वो तुरंत भागता है। और भाग करके वो जो औषधि है जिसे नोल वेल कहते, तो वहां जाकर उनको सूंघ लेता है, और सूंघ करके जब सूंघ लेता है तो फिर से उनको स्फूर्ति आ जाती है, और फिर से आता है, फिर से सर्प के साथ युद्ध करता है, और सर्प फिर से जहर मारता है, फिर से जाता है, फिर से आता है। वैसे बार बार वो सूंघने के कारण वो स्फूर्ति आ जाती है, और इस प्रकार युद्ध करते करते क्या होता है, वो सर्प का सारा जहर जो निकल जाता है, और आखिर में वो नेवले का विजय होता है। ये उदाहरण भक्तों जीवन में याद रखने योग्य है। इसी प्रकार जो सर्प है वो कोई नहीं, ये संसार और माया है, संसार के विषय हैं। लेकिन यदि हम इस औषधि को बार बार पीते रहेंगे तो माया में जाते हुए भी, संसार में रहते हुए भी, हम इस माया से पार हो जाएंगे, और एक न एक दिन हमारी विजय होगी और हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है औषधि भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात। तो जो निवृत्त है उनको आनंद प्रदान करती है कथा, और जो मुमुक्ष है उनके लिए औषधि है, और जो विषय है जो संसार के विषयों को सुनकर आनंदित होते हैं। संसार के विषय में क्या होता है, प्राय फिल्मों में एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, आपस में मिलते हैं और कभी कोई मिलने नहीं देता है तो चुप के मिले, ऐसी सब चल रहा है। तो भगवान कृष्ण की कथा ऐसी भी है ना, कृष्ण और राधा रानी चुप चुप के मिलते हैं, इसलिए उन लोगों को भी इसमें रस आता है, आनंद आता है सुनने में। भगवान की कथा सुनने में भी आनंदित है, भव औषधि भी है, और श्रोत्र जो निवृत्त है उनके लिए आस्वादनीय है। इसलिए तो हमारे आचार्य ने इस पर बहुत मंथन करते हुए इसका आस्वादन किया, और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि इन श्लोक का आस्वादन करना चाहिए, अर्थ करे आस्वादन, एक श्लोक के अर्थ को आस्वादन करना चाहिए, उसी में रस मिलता है। और प्रायः इस रस के कारण ही व्यक्ति भक्ति में टिक सकता है, यदि रस नहीं आया तो संसार के रस में चला जाएगा, है ना। इसलिए इन टेस्ट को, इन रस को लेना चाहिए, और यह भगवान की कथा से मिलता है। परीक्षित महाराज इस कथा की महिमा कहते हुए कहते हैं कि आप हमें कृष्ण की कथा सुनाइए जो, और अपने जीवन को याद करते हैं, भगवान के गुणों को याद करते हैं कि जिस कृष्ण के द्वारा महाभारत में, महाभारत जो विशाल सागर के समान थी, सेना थी, उसमें जिस कृष्ण के द्वारा मेरे पांच पितामह पांडवों की विजय हुई, समरे मरंजय उस विशाल सम्रागण में बड़े बड़े योद्धा देवव्रता तथा तिमिंगले, बड़े बड़े देवव्रत माने भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े तिमिंगल थे जिस युद्ध में, लेकिन जिन भगवान कृष्ण की कृपा से गोवत्स पदम, मेरे जो पितामह हैं एक गाय के खुर से बने हुए जो खड्डे हैं उनको पार करने के समान कोई कठिन नहीं है, मेरे पितामह इस महाभारत के युद्ध को पार कर गए हैं, उस कृष्ण की कथा अब मुझे सुनाइए। और फिर कहते हैं कि यहां तक कि जिन भगवान ने मेरी भी गर्भ में रक्षा की है ना, उस भगवान की कथा सुनाइए। अपने भगवान के उपकारों को याद कर रहे हैं, और भक्तों यदि हम भगवान के एक एक उपकार को याद करें तो शायद कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन इस पर विचार अवश्य करना चाहिए कि हमारी क्या औकात है और उससे भगवान ने हमें कितना दिया है, है ना। सबसे पहले तो ये भारत भूमि में जन्म दिया है भगवान ने, है ना, भारत भूमि से जन्म है, भारत भूमि में जन्म दिया, कितना पवित्र स्थान है, क्योंकि जितने भी पवित्र नदियां हैं सब भारत में है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुई भारत में, भगवान का जन्म हुआ भारत में। तो इन उपकारों को यदि हम याद करें, ये तो एक बात हुई, ऐसी तो कई बातें हैं, और उसके बाद भी हम यहाँ पर मीरा रोड में है, भक्तों के संग में है, प्रभुपाद जी के आश्रय में है, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। नहीं तो आप देखिए संसार की ओर लोग कितने दुखी हो रहे हैं, जिनको तो योग्य बात बताने वाला नहीं है, कोई उनको भक्ति प्रदान करने वाला नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भारत में जन्म लिए हैं उनको चाहिए कि अपना जो है अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाएं और दूसरों को उपकार करें, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इस प्रकार से भगवान की कथा को याद करते परीक्षित महाराज कहते कथा सुनाई है, और प्रभुपाद जी इस अध्याय को नाम दिए हैं कृष्ण, क्योंकि इस अध्याय में कृष्ण के बारे में ही वर्णन है, जो नवम स्कंध का ये लास्ट अध्याय है 24वां, और उसी के अंतर्गत आज का ये श्लोक है। तो इस श्लोक में मेरे यस्यान नवकर कुंडल चारुकरणम, यद्यपि ये भगवान की गुणगान को गाना छोटे मुंह से गाना कठिन है, क्योंकि ये तो विशाल है, हरि अनंत है और उनकी कथाएं उनकी लीला भी अनंत है। बड़े बड़े शेष नारद शंभु ब्रह्मा इत्यादि इन भगवान के गुणों को गा रहे हैं, लेकिन आज तक उनको शेष नहीं कर पाए हैं। तो हम हमारे छोटे मुंह से इस कथा को गाना बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान की कथा समुद्र के समान है। और आज के श्लोक हैं जिसमें भगवान की स्वरूप का वर्णन हुआ है। यस्याननम मकर कुंडल चारु करणम, ये कैसे है? बोले आननम यस्य, भगवान का मुख, कृष्ण का जो मुख मंडल है, मकर कुंडल चारु करण मुखमंडल है, और उसके कर्ण में मकराकृत कुंडल लगे हुए हैं जो चमक रहे हैं, और उसके साथ साथ वो मकराकृत कुंडल चमकने के कारण उनका जो प्रकाश है वो गाल कपोलों पर पड़ रहा है, और इसी के कारण भगवान के कपोल भी बहुत चमक रहे हैं। वैसे तो एक श्लोक में कहा गया है भूषण भूषणांगम, हम लोग आभूषणों को इसलिए धारण करते हैं क्योंकि हम सुंदर दिखना चाहते हैं, लेकिन भगवान जब आभूषणों को धारण करते हैं तो वो आभूषण सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की कांति उनका स्वरूप इतना सुंदर है। भूषण भूषणांगम भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम, यहां पर भगवान के ऐसे मुखमंडल का वर्णन किया गया है जिनके कानों में कुंडल है और कपोल पर उनका प्रकाश पड़ते ही कपोल भी बहुत सुंदर शोभायमान हो रहे हैं, और साथ ही साथ सविलास हासम अपने भक्तों के साथ गोपियों के साथ विलास आनंद में वो मंद मंद स्मित हास मुस्कुराते हैं। ऐसा मुखमंडल, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा मुखमंडल प्राय भक्तों को, भक्त लोग ऐसे भगवान के स्वरूप को पीते रहते हैं और इसे पीना चाहिए। तो प्रभुपाद जी प्रातवर्य में कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासी और यशोदा नंद ये सब प्रतिदिन प्रतिक्षण कृष्ण को देखते थे और देखकर उनमें आनंद लेते थे और कभी तुष्ट नहीं होते थे देखते देखते, है ना? हमारी तरह नहीं है, गिद्धारी को देखा नहीं देखा भाग चले, है ना? कभी कभी तो गिद्धारी को ढूंढना पड़ता है कहाँ गया, है ना? इसलिए जब हम ठाकुर जी इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं तो उनके सामने जब खड़े हैं तो प्रभुपाद जी एक शब्द दिए हैं, गोपियां उनको सूक्ष्म रूप से देखती थी, केवल देखा और चल दिए नहीं, जो हमारी विधि प्रणाली है उसी के अनुसार सूक्ष्म रूप से हैं। और सूक्ष्म रूप का अर्थ है कि जब हम गिरधारी के सामने खड़े हैं तो सर्वप्रथम गुरुजनों को प्रार्थना करते हुए उनके चरणों के ऊपर दृष्टि बनाए रखें, और जैसे हमारे नवदा प्रकार की भक्ति में एक भक्ति है पाद सेवनम, अच्छा तो हम पाद सेवन भक्ति कैसे कर सकते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे चरण के द्वारा हम पद यात्रा कर सकते हैं, और दूसरा अर्थ कहते हैं कि भगवान के चरणों का ध्यान करके उन चरणों के द्वारा जितनी जितनी भी लीला हुई है उनको याद करना, स्मरण करना, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो फिर कैसे चरणों से ध्यान करके क्या स्मरण करें? तब भगवान ने अपने चरण काली नाग के ऊपर रखा और उसका सारा विष निकाल दिया, तो फिर एक लीला उनको याद कर सकते हैं। ऐसे अनेक अनेक लीलाएं हैं तो इनको याद करना, और गोपियां भी इसे याद करती हैं, फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम। इस प्रकार से चरणों को देखना, अपने दृष्टि को बनाए रखना, फिर धीरे धीरे उनके जांघ की ओर देखना, और साथ ही साथ ये देखना कि उन्होंने कैसे वस्त्र पहने हैं, कौन से रंग का वस्त्र पहना है, पग में कौन सी पायल पहनी है, उसमें क्या डिजाइन है, और चरण में तुलसी पत्ता होता है, फूल होते हैं, गुलाब होते हैं, इन सभी को देखना, और फिर आगे चलते हुए वस्त्र को देखना, कौन से रंग का है, उसमें कौन सी डिजाइन है, और कौन सा हार पहना है, उसमें कितने रंग के फूल लगे हुए हैं, हाथ में क्या पहना हुआ है, और फिर कमर में क्या है। इस प्रकार से एक एक चीज पर सूक्ष्म रूप से यदि चिंतन करते हैं, फिर चलते हुए उन्होंने हाथ में बांसुरी धारण की हुई है, और हाथ में अंगूठी पहनी हुई है, और उनकी बाल जो है काले घुंघराले, उसमें भी कुछ फूल लगे होते हैं, और फिर गले में कौन से किसकी माला पहनी है, और कौन से रंग की पहनी हुई है, इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन सूक्ष्म रूप से इसका यदि हम देखते हैं उनको ठीक से, तो वो सभी पूरे दिन भर हमारे मन में रहती है। यदि इस रस को यदि हम चख लेते हैं, तो फिर संसार का कोई भी रस हमें अच्छा नहीं लगता है। आज संसार के वस्तुओं के प्रति आकर्षण क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण नहीं है, और कृष्ण के प्रति आकर्षण क्यों नहीं है? क्योंकि हम ठीक से देखते नहीं है ना। चाहे कोई भी चीज हो, चाहे हरिनाम हो, चाहे भगवान की कथा हो, भगवान का रूप हो, इन सब को सूक्ष्म रूप से देखना, और इसके कारण भगवान हमारे मन में बस जाएंगे। ठाकुर जी मन में आ जाएंगे, तो दूसरा कुछ नहीं आएगा मन में, है ना। हम यदि बस हमें यही करना है कि ठाकुर जी को ठीक ठीक से हमारे मन में बिठा देना है। सूक्ष्म रूप से गोपियां कृष्ण को देखती थी, और इसके कारण जब सूक्ष्म रूप से वो देखती थी व्रज में निरंतर, तो इसके कारण जब कृष्ण रोज सुबह में गैया चराने के लिए जब निकल जाते थे, तो गोपियां बड़ी दुखी हो जाती थी, और एक ओर से दुखी होती थी कि कृष्ण के चरण कितने कोमल हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के चरणों को देखा है ठीक ठीक, और जाना है, समझा है। प्रभुपाद जी और एक बात लिखते हैं कि भगवान को हम जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उनका यहाँ आने का, उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे, उनके प्रयोजनों को नहीं समझ पाएंगे। तो गोपियां ठीक ठीक से जानती थी, और स्मरण कर रही है कि भगवान की चरण तो बहुत कोमल हैं, वो वन में जाएंगे, कंकण पत्थरों उनके पैर में लग जाएंगे, गोपी को बड़ा दुख होता था। इसमें विशेष प्रभुपाद जी ने व्रज भक्ति का वर्णन किया है। देखिए, ये है व्रज भक्ति, और इसीलिए हम सब भी इस व्रज भक्ति को करना है, और चैतन्य महाप्रभु का भी यही सिद्धांत है। भजन करना है तो ब्रजेंद्र नंदन सुंदर श्याम का, और कैसे करना है तो कैसे ब्रज भजो, जैसे ब्रज की गोपियों ने किया, गोपीर भरत पद कमलम यो दास दास अनुदास, इसी के अनुगति में हमें चलना है। और इस व्रज के वासी जितने भी थे, उनका क्या कृष्ण के प्रति क्या संबंध था, यही अंतर है। देखिए, व्रजवासी का हर समय यही मूड रहता था कि हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें, कृष्ण को सुख देना, ये उनका उद्देश्य था। और हम प्राय सुनते हैं, हम भजन क्यों करते हैं, कभी कभी इस बात पर सोचा जा सकता है। प्राय जनरल बात तो यही बतानी पड़ती है, लोगों को बतानी पड़ती है कि आप भजन करिए तो सुखी हो जाएंगे, और ये सत्य भी है। लेकिन जो भक्ति में आगे बढ़ गए हैं, उनका उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देना, अपने मान की, अपने प्रतिष्ठा की, अपने सुख की न सोचते हुए कृष्ण के सुख के लिए सोचना, यह है ब्रजवासियों का भाव। गोपी हर समय सोचते थे कि कृष्ण को दुख न लग जाए, उनको कष्ट न हो, और कृष्ण को कष्ट हो जाता था तो स्वयं दुखी हो जाते थे, और यही भक्तों का दुख होना चाहिए, है ना? ये ब्रजवासियों का प्रेम है। एक बार जब भगवान द्वारका में थे, तो द्वारका में भी, और ऐसे भक्तों के लिए भगवान भी रोते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान भी याद करते हैं। जब कृष्ण 11 साल वृंदावन में रहे और तत्पश्चात मथुरा में 18, उसके बाद वो चले गए द्वारका, तो द्वारका में जाकर भी उनको ब्रजवासियों की याद आती थी, जिसका वर्णन सनातन गोस्वामी पाद रचित बृहद भागवतामृत में विस्तार से, बहुत सुंदर। तो कृष्ण को हम हर हमेश वो बहुत बड़ी सुख सुविधा में थे, है ना, 16108 पटरानी या रानी पटरानी जो थे, लेकिन उस बीच में भी वो रोते थे, कभी कभी रोने लग जाते थे अचानक। तब उनकी सभी रानियां सोचने लगती थी कि अब हमारे ठाकुर जी, हमारे स्वामी को हम इतनी हैं, इतना सुख दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको किस बात का दुख है आखिर में। तब एक दिन रानियों ने पूछ ही लिया और उनको पता चल गया, उन्होंने रोहिणी माता को पूछा तो उनको पता चल गया कि कृष्ण इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको बचपन की याद आती है, और बचपन में उस ब्रजवासियों की याद आती है। गोपियों ने, वो पठानी और रानियों ने सोचा कि अच्छा, अब क्योंकि जब हमारे स्वामी है, पति है, और दूसरों को याद करके रो रहे हैं, मतलब हमारे प्रेम में कुछ कमी है। तब तो पटरानियां कहती है कि ऐसी कौन सी हम में कमी है कि हम कृष्ण को सुख नहीं दे रहे हैं, हम में ऐसी कौन सी कमी है आखिर में कि वो व्रजवासियों की उस नारियों को याद करके रो रहे हैं। तब भगवान ने सोचा कि अब इन पटरानियों को दिखाना पड़ेगा कि आप में और व्रजवासी में क्या अंतर है प्रेम में, भक्ति में। तब भगवान ने एक लीला रची, उसमें नारद जी को बुलाया, नारद जी को नहीं बुलाया, लेकिन भगवान को एक दिन बुखार आ गया। वैसे तो भगवान सच्चिदानंद से है, उनको कभी कुछ होता नहीं है, लेकिन जब वो लीला करते हैं है? तो लीला में तो वो बहुत कुछ करते हैं, कभी कभी रोते भी हैं। जैसे रामचंद्र बनकर आए तो अपनी पत्नी के लिए रोने लगे है? अब जिनके लिए करोड़ों लक्ष्मी सेवा करते हैं, जो सीता जी लक्ष्मी स्वरूप है, उनके लिए क्या रोना। लेकिन वो जब लीला करते हैं, अपने भक्तों को पोषण करने के लिए, उनको समझाने के लिए, तो लीला की भगवान को बुखार आ गया। और जब बुखार आ गया तो बुखार उतर ही नहीं रहा है, सभी रानियां तो चिंता में आ गई, क्या करे क्या करे। तब उसी समय नारद जी वहां पर आ गए, और नारद जी को पहले से भगवान ने कह कर रखा था। तो सब लोग प्रयास करे, सभी वेद को बुला रहे हैं, इलाज करे, लेकिन भगवान के बुखार ठीक नहीं हो रहे हैं, तो क्या करें। तब नारद जी आए तो नारद जी को कहा गया सभी रानियों के द्वारा, आप कुछ उपाय बताइए कि कृष्ण का बुखार कैसे होगा। तब नारद जी ने बताया कि यदि कोई भक्त, भगवान का भक्त, अपने चरण की रज भगवान के चरण पर लगाए जाए, भगवान के भक्तों की चरण रज भगवान के सर पर लगाया जाए, तब भगवान का बुखार ठीक हो सकता है। तब कहाँ ढूंढे उनकी भक्त। तो नारद जी ने कहा, आप सभी रानी जो है, आप ही भगवान के बड़े भक्त हैं, है ना, क्योंकि भक्ति के कारण ही तो आपने भगवान को प्राप्त किया है, बोले आप ही सब अपने चरण रज को दे दो। तब रानियों ने कहा, नहीं नहीं, इतना बड़ा पाप हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम यदि हमारे चरणों की रज हमारे स्वामी के सर पर चढ़ाएंगे तो हमें बड़ा पाप लगेगा, अपराध होगा, और जिसके कारण नरक में जाना पड़ता है करोड़ों करोड़ों साल तक, क्योंकि यहाँ पर साधारण पाप करता है तो नरक में जाता है, तो भगवान के चरणों अब क्या करे क्या करे। बोले गोपियों ने रानियों ने कहा कि हम अपने चरण रस को नहीं देंगे। भगवान ने नारद जी को कहा आप दे दो। लेकिन अंत में भगवान ने कहा कि ठीक है, आपके संसार में कोई जितने भी भक्त है कोई रज नहीं देंगे, लेकिन आप जाइए व्रज में, वहां से आपको ये रज मिलेगी। और नारद जी गए व्रज में, और व्रज में जाकर जैसे गए तो सभी गोपियों इनको मिले और कहे कि आप तो निरंतर भगवान के पास जाया करते हैं, तो कैसे है हमारे कृष्ण, कृष्ण को कुछ हुआ तो नहीं? कहते हैं कि हाँ कृष्ण को बुखार हो गया है और कम नहीं हो रहा है। अच्छा, इतना सुनती तो गोपियां रो पड़ी, उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी और तुरंत कहा कि कुछ उपाय कीजिए। क्या उपाय है उनका? तब नारद जी ने कहा यदि उनके कोई भक्त उनके चरणों की रज दे दे तो वो ठीक हो सकते हैं। बोले कोई नहीं दे रहा है। बोले उनकी पटरानियां तो नहीं दी। बोले तब उसी समय गोपियों ने अपने पग पांव से निकाल निकाल कर रज की पोटली भर भर के नारद जी को देने लगे कि ले जाइए और जल्दी कृष्ण को ठीक कीजिए। तब नारद जी ने कहा कि आप ये दे तो रही हो, लेकिन क्या इसका अर्थ जानती हो? आपको करोड़ों साल तक नरक में चढ़ना पड़ेगा। तब गोपियों ने कहा करोड़ों तो क्या, इससे भी ज्यादा यदि हमें नरक में रहना पड़े तो हम सह लेगी रहेगी, लेकिन कृष्ण ठीक होने चाहिए। यह व्रज का भाव, हम कष्ट में पड़े तो पड़े, तो यह व्रजवासियों का भाव। तब जाकर कृष्ण ने अपनी पटरानी को कहा देखा ये है व्रजवासियों का प्रेम। यही अंतर है, व्रजवासी जो है वो कृष्ण को तुष्ट करना चाहते हैं और हमें भी इस मूड को बनाना चाहिए कि हम हमारे जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें, अपने सुख को त्याग कर, और उसी को प्रेम कहते हैं, है ना? शुद्ध भक्ति इसी को तो कहते हैं। निज इंद्री की वांसा तारिक बलि काम, अपनी इंद्रियों को तृष्ट करना, खुद सुखी होना, उसी को काम कहते हैं। लेकिन कृष्ण इंद्री प्रतिवांसा तार धरे प्रेम नाम, कृष्ण को सुखी करना यह प्रेम। तो इसी प्रकार व्रजवासी हमेशा कृष्ण के दर्शन को देखती रहती थी और न देखने के कारण दुखी हो जाती थी, उनकी सेवा न करने के कारण दुखी हो जाती थी। और भगवान का सुख है ही ऐसा, अब इस पर तो कितना सफल चला जाए कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अलग अलग प्रसंग है, जैसे 11वें स्कंद में नारद जी का प्रसंग है। नारद जी जब द्वारका में आए वसुदेव जी के यहाँ, तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि गोविंद भज गुप्तायाम द्वारवत्याम क्रोध आवाच नारद अभिक्षणम कृष्ण उपादालसा। वहां कहते हैं कि नारद जी एक बार द्वारका में आए। वैसे तो द्वारका नारद जी बार बार आया करते हैं, अभिक्षणम एक एक क्षण के लिए नारद जी द्वारका में रहते थे। तब परीक्षित महाराज ने पूछा कि ऐसा क्यों है, नारद जी तो घूमने वाले हैं तो वो अभिक्षण द्वारका में आकर क्यों रह जाते थे? तो कहते हैं कृष्ण दर्शन लालसा, उनकी लालसा थी कि वो कृष्ण को बार बार देख रहे हैं। यद्यपि कई बार तो आचार्य ने लिखा है कि भगवान भगा देते थे, जाओ है ना, यहाँ पर इतना बड़ा हमारा झमेला है और तुम बार बार आ जाते हो, लेकिन फिर भी आ जाते थे, क्योंकि दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की बड़ी लालसा थी, क्योंकि उनका उनकी सौंदर्य उनके गुण इतने मधुर हैं। और ये जिनको सच का लग जाता है तो संसार सागर सूख जाता है और अंत में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहीं पर इस क्लास को विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। God.
ठीक है।